नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करे। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हांग झेंग से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के वित्त मंत्री नतालियो डी व्हीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय संबंध मजबूत करना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।